जय गुरुदेव जय गुरुदेव ओम अशरण शरण शरण प्रभुले कहीं जो को पविधाता गुरु रूठे नहीं को जगताता गुरु के वचन प्रति तन जाई सुख मन सुख सिद्धिताई ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव
जय गुरुदेव।
संत कबीर के भजन का भजन है घूंघट के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे वो जिन्हें प्राप्त करने के साथ इस जीवात्मा की प्यास सदा के लिए मिट जाती है फिर कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती उन परम प्रभु को तुम प्राप्त कर लोगे केवल कपट का पर्दा खोलो। इस आशय का भजन है कबीर का। और भगवान के निवास भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन पहले तो अर्जुन ने से भगवान ने कुछ कहा ही नहीं क्यों अर्जुन में पात्रता नहीं थी वो छोटी छोटी बात में झगड़ा कर रहा था। आरंभ से अर्जुन ने कहा भगवान कुल मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा करिए जरा देख तो लूं मुझे किस किस के साथ युद्ध करना उचित है भला गांडी उधारी दिव्य अस्त्रों की ज्ञाता अर्जुन का मुकाबला करने कौन चला आया जहां देखा तो लगा कांपने बोले प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा ये तो मेरा परिवार खड़ा है ऐसा युद्ध करने से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा कुल धर्म सनातन है जाति धर्माच शाश्वत जाति धर्म नष्ट हो जाएगा और जाति शाश्वत धर्म है वर्ण संकर पैदा हो जाएगा कुल की स्त्रियां दूषित होंगी पितर लोग गिर जाएंगे पिंडोदक क्रिया लोप हो जाएगी ये सनातन धर्म है। गोविंद हम लोग समझदार होकर महान पाप करने को उद्यत हुए हैं क्यों न इससे बचने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अर्जुन का कथन था आप समझदार हम समझदार उस गरीब को नहीं अर्जुन को नहीं मालूम था कि ये कोई विशेष हस्ती है वो सोचा कि ठीक कदाचित धनुर्वेद में मैं ही आगे हूं माना कि बुद्धि इनके पास है। हम लोग समझदार होकर लगत तब भगवान ने हंसते हुए से कहा कुतस्त्वा कस्मलमिदम विश्वे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्ति कर्म अर्जुना तुम्हें इस विषम स्थल में यह अज्ञान किस हेतु से उत्पन्न हो गया न ये कीर्ति बढ़ाने वाला है नहीं कल्याण करने वाला है और नहीं पूर्व श्रेष्ठ पुरुषों ने भूल के भी इसका आचरण किया है ये अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया अनार्य जुष्टम ये अनार्यों का आचरण तुमने कहाँ से पकड़ लिया। गीता आर्य संहिता है जो उस अविनाशी अस्तित्व का उपासक है आर्य है जिसकी वृत्ति उस अविनाशी अस्तित्व की ओर उन्मुख है वो आर्य व्रती है और जो नश्वर के पीछे भागता है वो अनार्य है। और तब जाति धर्म सनातन धर्म कुल धर्म सनातन धर्म पिंडोदक क्रिया सनातन धर्म भगवान ने कही अज्ञान कहां से उत्पन्न हो गया ये सब अज्ञान है तो फिर सत्य है क्या? अर्जुन ने सोचा, अरे इसके आगे तो हमें कुछ भी नहीं आता, और सच पूछो तो पूरे भारत के लोगों को कुछ भी नहीं आता, इसके आगे कुछ आता है क्या? कुछ नहीं आज भी। तब समर्पण कर दिया। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ चेता यत श्रेय स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वाम प्रपन्नम्। प्रभु ये अज्ञान है तो इसके आगे मुझे कुछ नहीं आता, सिद्ध है कि धर्म के रास्ते में विमूढ़ चित्त हूँ, मुझे वह उपदेश कीजिए जिससे मैं परम श्रेय को प्राप्त हो जाऊं। अर्जुन की मांग केवल श्रेय है, वस्तु नहीं। और स्वर्ग और किंतु पृथ्वी में अकंटक धन धान्य संपन्न साम्राज्य और देवताओं के स्वामीपन इंद्रपद में भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरे इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके, मन में स्थित क्षोभ को मिटा सके। इसके आगे कोई सत्य हो तो बताइए, वह उपदेश कीजिए, परम श्रेय को प्राप्त हो जाऊं। प्रभु कदाचित लड़खड़ाऊं न चल सकूं तो मुझे साधिए संभालिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। गीता गुरु शिष्य संवाद है। भगवान ने समझाना शुरू किया, अर्जुन ने प्रश्न करना शुरू किया, करीब करीब 24 प्रश्न किए। अंत में अर्जुन चुप हो गया। तब भगवान ने जो प्रश्न अर्जुन नहीं कर सकता था, उस भक्त के हैसियत के बाहर की वस्तु थी, वहां फिर भगवान ने स्वयं बताया। कहा, अर्जुन जानते हो ईश्वर कहाँ रहता है? ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय शेरजुन तिष्ठति भ्राम्यान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। अर्जुन ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में वास करता है, इतना समीप हृदय के अंदर, तब लोग देखते क्यों नहीं? माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर भ्रम बस भटकते ही रहते हैं, भ्रमते ही रहते हैं, इसलिए नहीं जानते। जब ईश्वर हृदय में है तो हम शरण किसकी जाएं? अगले ही श्लोक में कहते हैं, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्पश्चादात पराम शांतिम स्थानम प्रापसि शाश्वत। अर्जुन उस हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ, सर्वभावेन संपूर्ण भावों से जाओ, थोड़ा भाव संकट मोचन, थोड़ा भाव कमक्षा देवी, थोड़ा भाव पशुपतिनाथ, हम तो 12 आने लीक हो गए। हृदय स्थित ईश्वर के हिस्से में केवल 4 आने पड़े, कल्याण नहीं होगा। हमने समर्पण ही कब किया था? भगवान जानते हैं कि तू कितने परसेंट मुझसे जुड़ा है, इसलिए संपूर्ण भाव से पूरे मनोयोग से उस हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ। मान लो हमने सारी मान्यताएं तोड़ी, शरण चले गए, तो उससे लाभ क्या? कहते हैं तत्प्रसादात पराम शांति, उसके कृपा प्रसाद से तुम परम शांति प्राप्त कर लोगे। इतना ही नहीं, स्थानम प्रापसि शाश्वतम, तुम उस स्थान को पा जाओगे जो शाश्वत है, तुम्हारा निवास स्थान रहेगा और तुम्हारा जीवन रहेगा, वो अविनाशी, तुम्हारा जीवन अविनाशी, और अनंत जीवन शाश्वत शांति प्राप्त कर लोगे। तो गीता के अनुसार ईश्वर का निवास हृदय में, मानस के अनुसार ईश्वर का निवास हृदय में। भवानी संकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा शांता स्थमीश्वर। मैं उन भवानी और शंकर की वंदना करता हूँ जो श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं। हमें वहाँ श्रद्धा स्थिर करनी है, विश्वास वहाँ स्थिर करना है। उनके बिना सिद्ध जन भी हृदय में स्थित ईश्वर को नहीं पहचान पाते, तो साधारण लोगों की कौन बात है? जब सिद्ध कोटि में पहुँचे हुए भी थोड़ी सी दूरी रह गई, वो भी नहीं पकड़ पाते, नहीं पहचान पाते। शंकर शंकारी से शंकर है, जो शंकाओं से अतीत महापुरुष हुए हैं, केवल्य पद प्राप्त सदगुरु हैं, उनका परिचायक। तुलसी का ईश्वर हृदय में, वैदिक काल के हर महापुरुषों ने जब कभी इसे प्राप्त किया, विदित किया, तो हृदय दिश में। और महापुरुष यदि अनुभवी महापुरुष हो, भगवान के गाइडेंस में चलने वाला पथिक है, तो वो दूसरा कुछ कह ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान एक, उनकी विभूतियां एक, उनकी स्थिति एक, वो एक से सवा कभी होता नहीं। रामन देखे वान, वो दूसरा हो ही नहीं सकता। इसलिए संत कबीर, अंगूठा छाप कबीर, लेकिन अनुभवी महापुरुष थे, उन्होंने भी जब भगवान को पाया तो हृदय में। एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम का शकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। सृष्टि में कोई एक इकाई है तो राम, राम एक है। रहते कहो कि घट घट में लेटा, सब घट मेरा साईया, सुनी से जन कोई बलिहारी घट तासु की, जा घट पर घट हुई। सब घट में, सब हृदय में मेरे साई का निवास है, सुनी सहजन कोई, एक भी हृदय का आसन सुना नहीं। तब तो सबको नमन करो, बोले ना, वो बलिहारी घट तासु की, जा घट पर घट हुई। मैं उस घट के ऊपर अपने आप को समर्पित करता हूं जिस घट में वो प्रगट हो गए, जहां प्रगट हुए वो सदगुरु हैं, वो महापुरुष हैं। अर्थात घट में स्थित माँ वो प्रगट भी होते हैं। तो एक राम घट घट में लेटा, तो घट में लेटा होगा हमारे किस काम का, मिले कैसे? तो एक राम दशरथ कर बेटा, राम एक ही है, दशरथ कर बेटा, दशों इंद्रियों की निरोधमयी प्रवृत्ति ही दशरथ है। राम नाम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल होए। सब राम 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 कहते हैं, दशरथ कोई कहता ही नहीं। एक बार दशरथ कह दे तो कोटि यज्ञ फल होए, इतना बड़ा मुनाफा, फिर भी दशरथ दशरथ कोई नहीं जपता, जपना भी नहीं चाहिए। कितना भी राम नाम जपो, पुण्य बढ़ेगा, पुरुषार्थ बढ़ेगा, लेकिन दशों इंद्रियों की निरोधमयी प्रवृत्ति दशरथ है। जहां दशों इंद्रियों के संयम के साथ जो नाम आता है, तो सीधी भगवान से संबंध जुड़ जाता है। रथ की लगाम रथी के हाथ में होती है, इंद्रियें घोड़े हैं, शरीर एक रथ है, मन लगाम है। जब ये मन की लगाम हाथ में हो जाती, इतना संयत हो जाता है, तो फिर जिधर हम ले चले उधर चलेगा। जहां मन की लगाम हाथ में आई, तो दशरथ, इस दशों इंद्रियों की निरोध में ही प्रवृत्ति ही दशरथ है। विषयों में तो कभी निरोध होगा नहीं, जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई, हर लाभ एक नवीन लोभ को जन्म देता है। आज हमारे थोड़ी परिस्थिति लड़खड़ा गई, शाम को दो रोटी का ठिकाना नहीं, जब दो रोटी मिलेंगी तो हम फूले नहीं समाएंगे, प्रभु ने सुनवाई कर ली। लेकिन जब वो स्रोत मिल गया, साइड मिल गई, गिरफ्त आ गई धंधे की, तो लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, फिर नींद हराम, क्या कभी पेट भरता है? योजना योजना योजना, इतने में ब्लड प्रेशर हाई। संसार में हर लोग नवीन, हर फायदा नवीन लोभ को जन्म देता है, जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई। ये जब संयम होता है, तो ईश्वर के चिंतन में, जहां दशों इंद्रियां सिमट के इष्टोन्मुख जिस क्षण प्रवाहित हुई, तो प्रकट हो जाएगा भगवान, जो प्रसुप्त हृदय में उजागृत हो जाएगा, आपकी उंगली पकड़ के आपको ले चलेगा। तो एक राम दशरथ कर बेटा, अर्थात संयम करो, वो अवश्य मिलेगा। दसों इंद्रियों की संयम जिस क्षण सदा, उस क्षण वो प्रकट हो जाएगा, उसे प्राप्त करने का यही तरीका है। एक राम का, एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम का शकल पसारा। राम एक है, जो कुछ भी यावन मात्र जगत है, उसी का पट पसार है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मेरे तेज के अंश मात्र से सृष्टि का सृजन पालन और परिवर्तन होता ही रहता है। उसका निर्माता वो है कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार, जग कारण भव तारण भंजन धरणी भार। जगत का कारण भगवान, विश्व के रचयिता भगवान। इसलिए ये जो कुछ पट पसार देखते हो, एक उस परमात्मा के तेज के अंश से है। तो एक राम का शकल पसारा, इतनी बड़ी कारखाने का मालिक तब तो रात दिन फटफटाते होंगे, ऐसा मिलाते होंगे। बोले ना, एक राम सब जग से न्यारा। संसार में एक है तो राम, सबका इतना परपंच फैलाते हुए सब जग से न्यारा, सबसे अलग है। वो निर्लेप है, दृष्टा के रूप में है। जो कुछ कर रहे हैं कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। एक सत्ता है तो परमात्मा, और उसी आशय का ये भजन है। भगवान घट घट में लेटा है, लेकिन घट में पड़दे पड़े हैं, घूंघट है। तो घूंघट के पट खोल री तो हे पिया मिलेंगे, घट घट रमता घट घट रमता राम रमैया, घट घट रमता राम रमैया। कटुक बचन मत बोल री तो हे पिया मिलेंगे, धन यौवन का गर्भन कीजे। धन है यौवन है तो हम गर्भ क्यों न करें, कि धन यौवन का गर्भन कीजे। झूठा पच रंग चोलरी तो हे पिया मिलेंगे। झूठा माने नस्वर, पंचभूतों से निर्मित एक खोल। खोल तो पुरानी हो जाएगी, फट भी जाएगी। घूंघट के पट खोल री तो हे पिया मिलेंगे। सुने मंदिर दीप जला के, सुने मंदिर दीप जला के, आसन से मत डोल री तो हे पिया मिलेंगे। योग जुगत सों रंग महल में, योग युगत सों रंग महल में, पिया पायो अनमोल री तो हे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल री तो हे पिया मिलेंगे। कहत कबीर आनंद भयो है, कहत कबीर आनंद भयो है, अनहद बा जत ढोल री तो हे पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल री तो हे पिया मिलेंगे। भजन आप स्त्री हो अथवा पुरुष, शरीर भजन कभी नहीं करता। इष्ट उन्मुखी एक लगन जागृत हो जाती है, वो भजन करवा लेती है। अनादि काल से वैदिक काल की मातानसुईया माता मदालसा, जिस जिस से पार लगा हो, सप्त ऋषि सनकादि ऋषि वशिष्ठ विश्वामित्र वाल्मीकि, जब कभी किसी से भजन पार लगा है तो इष्टोन्मुखी लगन जागृत हुई। तुलसी सूर कबीर मीरा इत्यादि उनके भजन का स्रोत है लगन की जागृति, इष्टोन्मुखी प्रवृत्ति। जहां वो वृत्ति जागृत होगी तो भजन करा लेगी। ये एक नारी संज्ञा है, इसलिए नारी कहकर संबोधित किया है। भजन यही करेगी। शरीर तो एक साधन धाम, धाम माने निवास। आपको ये घर मिल गया जो ईश्वर प्राप्ति का एक उपाय है। लगन लग भी जाती है, किंतु ये जन्मांतरों का अभ्यास इस जीव को कुछ खुरापात उधेड़ बुन करना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाला जन ही मुझे प्राप्त करता है, मुझे कपट छल छद्म नहीं सुहाता। फिर भी इस जीव में एक ऐसी स्वभाव की रील पड़ी रहती है, अंतिम संस्कार नहीं मिट जाता तब तक पीछा करती है कि कुछ न कुछ छल छद्म उधेड़ बुन करना। ये पर्दा है, घूंघट माने पर्दा, घूंघट माने आवरण। महाशति शिव और सती, सती का भी, सती ने भी कपट कर लिया। परम पावन अवस्था में थी वो, वनवास काल में भोलेनाथ जंगल में भ्रमण कर रहे थे, सती साथ में थी। इतने में भगवान राम पर दृष्टि पड़ गई तो असमय जान के पहचान नहीं किया। लेकिन जय सच्चिदानंद पर धामा, सच्चिदानंद परम धाम कह के संबोधित किया शिव ने, और प्रेम में मग्न हो गए। तो सती को बड़ी चिंता हुई। शंकर जगत बंदे जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावें सीसा, तीन निरपशुत कीन पर नामा। उन्होंने एक साधारण राजा के लड़के को प्रणाम कर लिया, कहा तो कुछ नहीं लेकिन उधेड़ बुन में लगी थी। भोलेनाथ ने कहा सती तुम्हें इस प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। बोले नहीं भगवान, है तो राजा का लड़का ही। बोले जाके परीक्षा ले लो। तपाक से गई, बोले हाय सीते हाय मृगलोचनी, रट लगाए हैं। तुरंत सीता का रूप धारण किया, आगे बढ़ी। लक्ष्मण ने पहचान लिया। लक्ष्मण दीख उमा कृत भेखा, उमा को सती का भेष बनाए देखा। बोले बवाल क्या है, प्रभु तो जानते ही, मैं क्यों बोलूं। भगवान की दृष्टि पड़ी तो सादर साष्टांग दंडवत किया। बोले मातेश्वरी अकेली आप वन में क्यों भ्रमण कर रही हैं, वृष केतु कहाँ है। तब संकोच में पड़ गई। बोले अरे ये तो सचमुच भगवान है क्या। लौट गई, कुछ बोली ही नहीं। भगवान ने देखा कि सती ने कुछ कष्ट पाया है, थोड़ी सी महिमा दिखा दिया। सती ने जिस रास्ते जा रही तो आगे राम लक्ष्मण सीता आ रहे थे। बोले इनसे मुंह बचाओ। दूसरी तरफ घूमी तो उधर भी आ रहे थे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण उधर भी आ रहे थे। आंख मूंद के बैठ गई तो हृदय में देखा कि वहां भी हैं। फिर उसने देखा अगणित विष्णु शिव ब्रह्मा सरस्वती उमा असंख्य लोक लोकांतर, सब कुछ भिन्न भिन्न अवस्था में देखा, लेकिन रामन देखे आन वो दूसरे प्रकार के नहीं। क्योंकि प्रभु ही एक ऐसी सत्ता जो अपरिवर्तनशील। फिर अब खत्म सीन पर अब आई तो सोचे ओफ हमने महान भूल की जो शिव का कहना नहीं माना, अब मैं क्या उत्तर दूंगी। इतने में भोलेनाथ ने पूछ ही लिया, बोलो कौन विधि से तुमने परीक्षा ली। बोले नहीं भगवान, हमने कोई परीक्षा ली ही नहीं, आप ही की तरह प्रणाम कर लिया, वास्तव में परमात्मा है। तो सोचे इतनी तपाक से गई और कुछ किया ही नहीं। तब शंकर देख्यों धरी ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। सती ने जो कुछ किया सारा चरित्र आंखों के सामने आ गया। शंकर ने तुरंत सती का परित्याग कर दिया। सती कीन सीता कर भेखा, जगत जननी माता का स्वरूप धारण किया। तो यही तन सती भेट अब नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। मन में संकल्प करना था कि आकाशवाणी हुई भोलेनाथ आपके अलावा इतना सुदृढ़ भला प्रण कौन कर सकता है। उसने समझ लिया कि मुझे त्याग दिया। एक दिन जाके इस जरा सा झूठ बोलने का दुष्परिणाम अग्नि कुंड में जलना पड़ा, एक जन्म और लेना पड़ा। तो शति कोटि पे पहुंची हुई पवित्र आत्माओं में भी एक कपट की लहर आई जाती। नारद ने भी ऐसे ही छिपाव किया था। यह है घूंघट। पूज्य महाराज जी कहें, जो हृदय में हो जबान पर हो, हृदय में कुछ और जबान पर कुछ और, वो साधक कभी कामयाब नहीं होता। ये घूंघट है, इसी आशय का ये भजन है। घूंघट के पट खोल री तो ही पिया मिलेंगे। घूंघट, घट कहते हैं हृदय को, लेकिन हृदय में पर्दे पड़े हुए हैं माया के मल आवरण विक्षेप के, जन्म जन्मांतरों के संस्कारों की रील पड़ी है। उस पर्दे को खोलो तुम्हें वह अवश्य परम प्रभु का साक्षात्कार होगा। संत कबीर ने अपने आराध्य देव को साईं, प्रिया, प्रियतम, पति कहकर संबोधित किया। क्यों? जिन्हें प्राप्त कर लेने के पश्चात शिष्य जीव आत्मा की सदा सदा के लिए प्यास मिट जाती है, कुछ भी पाने की इच्छा नहीं होती। उसके साथ ही जे ही जाने जग जाई हराई, जगत तो खो ही जाता था, मांगने लायक कुछ बचा ही नहीं। ईश्वरी बचा तो भला आगे सत्ता है ही नहीं, ढूंढेगा क्या? फिर यह आत्मा पूर्ण तृप्त, पूर्ण स्थिति वाली हो जाती है, जीव की प्यास मिट जाती, इसलिए प्रिया कहकर संबोधित किया। साईं माने मालिक होता ही है, दूसरा होता है प्रियतम, प्रिय उत्तम से प्रियतम। उन प्रभु से एक बार संबंध जुड़ गया तो फिर कभी बिछो नहीं होता। ईश्वर पथ में बीज का नाश नहीं है। स्वल्प अभ्यास भी अर्जुन महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। स्वल्प अभ्यास, दो कदम इस जन्म में हमने रख दिए, साधना समझ कर गीतोक्त, और दो कदम चलते बन गया, श्वास के रहते रहते अगले जन्म में तीसरा ही चरण रखोगे, दो चार जन्म के अंतराल से वहीं पहुंच जाओगे जिसका नाम परम गति परम धाम है, जिनसे संबंध जुड़ जाने के पश्चात फिर उसका कभी विच्छेद नहीं होता, कल्याण कर ही के दम लेता है। इसलिए प्रिय उत्तम, प्रिय उत्तम से प्रियतम, प्रीति का सर्वोपरि माध्यम। संसार में तो प्रेम और विच्छेद होता ही रहता है, लेकिन वो कभी नहीं छूटता, प्रीति का सर्वोपरि माध्यम है। ईश्वर प्राप्ति में यही एक सार है। टेक सुदृढ़, संयम सुदृढ़, भगवान से श्रद्धा की डोरी फिर नहीं टूटे, लो लग जाए। पति, पथ कहते हैं इज्जत को, मर्यादा को। मेरी पथ रखो गिरधारी, भगवान मेरी पथ को रख ले। आज किसी की इज्जत चली गई, दो खरी खोटी सुनाया, चेहरा लटक गया, दो झापड़ लगा दिया तो दुगनी हो गई। शादी विवाह में रोज झंझट होती रहती है, किसी गरीब ने कहा बुलेट देंगे और नहीं दे सका, समधी साहब की गर्दन लटक गई, इज्जत हल्की हो गई। बरात को क्या, उनका तो भव्य स्वागत हुआ, और कहीं मारुति पकड़ा दिया तो चौगनी हो गई। और जहां आयु के दिन पूरे हो गए, शरीर छूट गया तो यहां की इज्जत यहीं धरी रह गई। सोईपुर पाटन बहुरी ने देखा आई लौट के, वो अपनी अर्जित समृद्धि और सुत नाती न तेरुआ, लौट के कोई नहीं देखता। ये तो जन्म और मृत्यु के बीच का एक पड़ाव है, किंतु ये आत्मा अविनाशी शाश्वत सत्य परम तत्व है, निर्लेप और निर्दोष है। ऐसा निर्दोष स्वरूप के होते हुए भी, जो आपका छिपा स्वरूप है, उसके होते हुए भी बारंबार गर्भवास की अनंत योनियों का भ्रमण इस दयनीय दशा से उबार लेने में कोई सक्षम है तो कौन? भगवान। इस दयनीय दशा से उबार के और शाश्वत सम स्थिति प्रदान कर देने में, उस मर्यादित स्वरूप में प्रतिष्ठित करने में समर्थ है तो भगवान। इसलिए आराध्य देव को संत कबीर ने पद को रखने वाले पति कहकर संबोधित किया। ये झगड़ा बुराना माता मीरा, कालांतर में लोगों ने
इस पावन शब्द को पति परमात्मा का ही परिचय है। वो पत रखने वाले, उनके सहस्रों नामों में से एक नाम ये भी है, किंतु कालांतर में भारतीय पूर्वजों ने इस पवित्र नाम को संस्कृति में ले लिया। पति और पत्नी आदर्श शब्द होने से कि इसी बहाने भगवान का स्मरण बना रहे। माता मीरा का पति भोजराज राणा का जब स्वर्गवास हुआ, बहुत खुश हुई रनिवास की रानी, बोले फंद कटा, अब मीरा जल जाएगी। जाके भला देव ने सुनवाई तो कर लिया, देखो ना ये गरीबों के बीच में जाके भजन कीर्तन करती है, ये हमारी मस्तिष्क नीचा कर दिया, हमारा सम्मान घटा दिया इसने, चलो अब जल जाएगी। अब महारानी मीरा चलिए सती हो जाइए। बोले भाई क्यों? बोले तुम्हारा पति मर गया। मीरा ने कहा पागल हो गई हो, ऐसे पति को क्यों भरूं जो जन्मे मर जाए, मीरा अविनाशी भरो सुहाग अमर हो जाए। भला ऐसे पति का मैंने वरण ही कब किया था जो जन्मे और मर जाए। मीरा ने अविनाशी का वरण किया है, मेरा सुहाग अक्षुण्य है, सदा अचल है, फिर पति रहता कहाँ है? औरों के पिया पर देश बसत हैं, लिख लिख भेजत पाती, हमारे पिया मोरे ही बसत हैं, नहीं कहूँ जाती नहीं आती। औरों के पिया पर देश में बसते हैं, चिट्ठी पत्री से संपर्क साधते रहते हैं, हमारे पिया मेरे हृदय के अंतराल में निवास करते हैं, न कहीं जाना है न आना है। राणो जी मैं तो गिरधर रंगवा रहती, मैं उस गिरिधर के रंग में रंग गई हूँ, अब तक उपद्रव किया क्षम्य था, अब जरा संभलना, मैं क्षमा भी कर दूंगी तो भगवान नहीं क्षमा करें। राणा भी समझ गए, क्यों जहर पिलाना, सूली की सैया में लेटाना, सर्पों से कटाना, तोप से मंदिर उड़ा देना, सब तो कर चुके थे, जान गए कि इनके पीछे कोई रख सकता अवश्य। उन्होंने भी सादर नमन किया। इसी पति परमात्मा का परिचय के इसी शब्दावली का अनुसरण तुलसीदास जी ने किया कि यह अभिमान न जाहिं जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। वो अभिमान भूल के भी न जब मिटे मेरा कि मैं सेवक हूं और भगवान मेरे पति। क्यों? तुलसीदास क्या स्त्री थे? वास्तव में ये परमात्मा का ही परिचायक शब्द है। पत रखने वाले सुग्रीव घबरा गया, कहा हनुमान तुम जल्दी जाओ, देखो तलहटी में दो शूरवीर दिखाई दे रहे हैं धनुर्धारी, भैया बाली का मन मैला है, कहीं मेरी हत्या करने तो नहीं भेज दिया? हनुमान जी ने कहा राजन आप निश्चिंत रहें, मैं अभी देखता हूँ। तुरंत ब्राह्मण का भेष बनाया, कवच पहना, पोथी बगल में दबाया, तिलक स्वरूप बनाया और घूम के राम और लक्ष्मण के सामने खड़े हो गए। बोले ओ शुभ आशीर्वाद, ये आप लोग जंगल में किस लिए भ्रमण कर रहे हैं? आपकी दिव्य आभा देखते बनती है, क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई हैं, नर अथवा नारायण हैं, या साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं? आप कौन हैं? लगे धुआंधार शुद्ध संस्कृत में प्रवचन करने। भगवान राम भी मन बहलाने लगे। कुछ देर बाद हनुमान को पता चला जिसकी तलाश में मैं प्रतीक्षा में पड़ा हूँ इस पहाड़ी पर, वही प्रभु आ गए। साष्टांग दंडवत लौट गया चरणों में हनुमान। बोले प्रभु सेवक को बड़ा देर में पहचाना। भगवान ने तुरंत हनुमान जी को उठाया, गले लगाया, बोले हनुमान तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सुनु कपिजिए मानस जनी उना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। ये हनुमान जी में बिल्कुल मलाल मत लाना, तुम मुझे लक्ष्मण से दूने प्रिय हो, तो जानी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सूला। हनुमान जी ने जब पति को अनुकूल समझा, हृदय हर्ष से द्रवित हो गया, सारा दुख दूर हो गया।
क्यों? हनुमान क्या स्त्री थे? वो वानर जातीय पुरुष थे, एक राजकुमार थे, अखंड बाल ब्रह्मचारी थे। वहां संसार वाले पति पत्नी वाला सब्जेक्ट ही नील था ही नहीं। वास्तव में पति माने परमात्मा। उन परम प्रभु को अनुकूल समझा, हनुमान का सारा दुख दूर हो गया। ये परमात्मा का ही एक पवित्र नाम है। घूंघट के पट खोल री तोहे पीव मिलेंगे। जिन्हें प्राप्त करने के साथ ही इस जीवात्मा की प्यास सदा के लिए तृप्त हो जाती है, तुम उन्हें प्राप्त कर लोगे, वो पद प्राप्त कर लोगे। जरा अंताकरण के पर्दे को हटाओ, कपट चतुराई छल छद्म को हटाओ, क्योंकि वहां मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई भजत कृपा करी है रघुराई। तो भला हम पर तो खोले, वो पिया रहते कहाँ हैं? तो घट घट रमता, घट घट रमता राम रमैया, घट घट रमता राम रमैया। तो कटुक बचन मत बोल री तो हे पीव मिलेंगे। वो हर घट में निवास करते हैं। घट कहते हैं हृदय को, वो हर हृदय में निवास करते हैं। सब घट मेरा साईया, सुनी से जन कोई बलिहारी, घट तासु की जागत पर घट हुई। सब घट में, सब हृदय में मेरा साई है। सुनी सहजन कोई, एक भी हृदय का आसन उससे रिक्त नहीं है। तब तो सबको नमन करो। कहते नहीं, बलिहारी घट तासु की जागट प्रगट हो। उस घट के ऊपर मैं अपने आप को बलि चढ़ाता हूँ, न्योछावर करता हूँ, अपना बल समर्पित करता हूँ। बलिहारी का मतलब होता है मन कर्म वचन से समर्पण। मैं वहां समर्पित करता हूँ जिस घट में वो प्रगट हो गया, जहाँ भगवान वो प्रगट है हृदय में। वो सदगुरु हैं, वो पूर्ण पुरुष हैं, उनके प्रति मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ। तो घट घट रमता राम रमैया, हर घट में जब कभी किसी ने प्राप्त किया तो हृदय देश में, तो उनकी प्राप्ति के लिए एक काम आवश्यक है। तो कटुक बचन मत बोल री तो हे पिया मिलेंगे। कटुक बचन, ठाड़ा तिलक, मधुरी बानी, दगाबाज के ये है निशान। भयदायक खल के प्रिय बानी, जिमी अकाल के खुशम भवानी। खल की प्रिय बानी मौत का संदेश है, फिर मारीच के प्राण बचे ही नहीं। रावण ने देखा कि खरदूषण मारा गया। खरदूषण मोहि सम बलवंता, ताही को मारे बिनु भगवंता। जनरंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। कदाचित भगवान ने अवतार ले लिया, तो मैं जाई वैर हटी करी हूं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरी हूं। वही है भजनन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ेहा। भयदायक खल के प्रिय बाणी, खल की प्रिय बाणी बड़ा भयप्रद होती है, मौत का संदेशा है। मारिच ने कुछ समझाया तो उठा लिया तलवार, बोले दुष्ट बता मेरे समान बलशाली कौन है, चलता है कि मारूं? आखिर मारिच के प्राण नहीं बचे। खल भी प्रिय बोलते हैं, लेकिन कार्य सलटाने के लिए तो प्रिय भाषण बहुत खतरनाक। कलकत्ता से एक सेठ आए, बोले महाराज 2 लाख रुपया मेरे घर पहुंचा दिया है। एक दूसरे सेठ ने हमें बुलाया, जाऊं कि नहीं? हम बोले आप करते क्या? बोले मैं सेल्समैन हूं। आप में गुण क्या है? बताया कि कोई ग्राहक यदि शोरूम में प्रवेश कर ही गया तो लौट के नहीं जा सकता, उसे वस्तु लेना ही होगा, ये मेरा गुण है। कलकत्ता में महाराज अच्छे सेल्समैनों को लोग दूर से आंकते रहते हैं, देखते हैं बढ़िया सेल्समैन है, तो 2-2.5 लाख रुपया उसके घर भेज देते हैं और उसको बुला लेते हैं, मेरे पास भी पहुंच गया पैसा। हम बोले जरूर जाओ। प्रिय भाषण, इलाहाबाद चले गए। हमारे साथ कई लोग थे तो एक सज्जन ने कहा, मेरा एक खिलौने की दुकान में चले गए, एक सज्जन बोले कि मेरा बच्चा बहुत सौम्य, बड़ा सरल है, हल्का वाला दे दो। बोले अरे बच्चे तो सौम्य होते ही हैं, वो तो भगवान का स्वरूप होते हैं। तो बता सा गुरु, बोले हमार लड़कुआ सार बड़ा चंचल है, वो तोड़ दे इस खिलौनवा, इसलिए वो दे दो। बोले अरे बच्चे तो फुदकते हुए मिर्गे होते हैं, उनका तो चंचलता ही उनका शान है, उनको भी खिलौना पकड़ा दिया, उनको भी पकड़ा दिया। तो प्रिय भाषण तो कार्य सलटाने का एक तरीका, इसलिए ये प्रिय नहीं कटुक वचन मत बोलो। तो प्रिय भाषण तो कार्य सलटाने का एक तरीका, इसलिए ये प्रिय नहीं कटुक वचन मत बोलो। कटु वो है जो हमें संस्कृति में भरमाए, संसार में फंसाए, और मधुर वो शब्द हैं जो ईश्वरीय माधुर्य प्रदान कर दे, आत्मिक पथ को प्रशस्त कर दे और साधना पथ में हमें अग्रसर कर दे। तो कटुक वचन मत बोल री तो ये पिया मिलेंगे, और कहीं मधुर है ही नहीं। मधुर से एक जीवन यापन होगा, मधुर वो जो प्रभु का माधुर्य प्रदान कर दे। साधकों के लिए तो इतने कड़े प्रतिबंध है कि जब बोले तब हरिगुण गावे, मौन रहे कि नाम जपावे। जब बोलो तो हरिगुण गान करो, मौन रहो या नाम जपाओ। हृदय में यदि प्रभु का स्मरण है तो वाणी भी प्रभु की ही निकलेगी। हृदय में प्रभु प्रसारित हो, चिंतन हो और वाणी निकले तो कौए की तरह उटांग पटांग। तो समझना चाहिए कि उसके हृदय में भजन नहीं है, इसलिए कटुक वचन मत बोल। अवश्य उपरम प्रभु तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन उप्रभु इस पथ में एक भयंकर रुकावट है, वो है धन और यौवन का गर्व, बड़ा खतरनाक। ये इस पथ में आगे बढ़ने से हमारी टांग पकड़ के घसीट देता है, ये भुला देता है इस नशे में। एक सज्जन ने कहा, भगत हैं आश्रम के, बोले चलो आश्रम चले। बोले अब मैं महाराज के पास क्यों जाऊं, 100 आदमी को तो मैं ही भोजन देता हूं। वो कालीन वाले थे, एक भट्टे वाले थे, तो हमने कहा भोजन देते हो, पेट और वस्त्र के आगे किसी मजदूर को कभी कुछ दिया है क्या? कहते मैं 100 आदमी को भोजन देता हूं। हाँ वो नहीं बोले, उन्होंने अपनी परिस्थिति को अवगत कराया अपने साथी को, कोई अभाव नहीं था कि इतना कुछ है। करीब 14 करोड़ का विदेश का है वो देना लेना। तो ये गर्व बड़ा खतरनाक, इसलिए एक रुकावट है, आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। तो धन यौवन का गर्वन कीजे, भला क्यों न करे, जब धन भी है यौवन भी है काहे न करे। कि झूठा पचरंग चोलरी तो हे पिया मिलेंगे, झूठा माने नश्वर, आज है तो कल नहीं रह जाएगा। ये नश्वर है, अनित्य है। क्षिति जल पावक गगन और समीर पंच महाभूतों से निर्मित एक खोल है, एक आवरण है, वस्तु नहीं, तत्व नहीं। और इसलिए इसके भुलावे में मत आओ, ये तो छूट ही जाएगा। झूठा पचरंग चोल, सृष्टि में कुछ भी निर्मित है तो इन पंचभूतों से निर्मित पदार्थ है। प्रभु के दर्शन के साथ ही प्रकृति भी पुरुषोत्तम विलीन हो जाती है, अर्थात ये नश्वर है। पंचभूतों से निर्मित एक कलेवर है, खोल है। धन का मद तो होता ही है। एक कबीर ने के समय में कबीर ने संदेश दिया, लोग परस्पर पूछते हैं कुशल है, तो बोले हाँ प्रमोशन हो गया है पुत्र का, नाती अमेरिका पढ़ने गया है, पनत का जन्म हो गया, दिखवार आ गए, ये कुशल वो कुशल, इतने में आयु के दिन पूरे हो गए। जिस कमी की पूर्ति के लिए दुर्लभ तन मिला था उसके लिए तो हमने सोचा ही नहीं। तो कुशल कहत कहत जगविन से कुशल काल की फांसी, कहे कबीर एक राम भजे बिनु बांधे यमपुर जासी। बोले कुशल है? बोले हाँ, श्वास बढ़िया है, च्यवनप्राश वगैरह मिल रहा है, वृद्धा पेंशन मिल गई है, पनत पैदा हुआ है। बोले ये कुशल वो कुशल, कुशल नहीं, ये तो कहीं काल का फेंका हुआ फंदा तो नहीं है, इसमें उसमें मन लगाया, इतने में आयु के दिन पूरे हो गए, राम नाम सत्य है, मन कर्णिका घाट, इतने इसलिए ये कुशल नहीं, ये काल समय का फैला हुआ यंत्र है, फंदा है, जहां समय पूरा हुआ तो मनुष्य ने एक श्वास अधिक ले पाता है और नहीं एक ग्रास और खा पाता है, राम नाम सत्य है, इसलिए कुशल नहीं, ये तो काल समय का फेंका हुआ एक फंदा है। तो कुशल काल की फांसी, तो भला कुशल है कहाँ, कहे कबीर एक राम भजे बिर बांधे यम पूजा से, बरबस जकड़ कर यम लोक पहुंचा दियो जाओगे। इसलिए धन यौवन और दूसरा दी जवानी आ गई तो फिर क्या कहना, किसी किसी बच्चों के मुंह से हमने सुना अब तो आदमी हमको भुनगे की तरह दिखाई देता है, और जवानी अंधेरी आ रहा थे, न जाने कहाँ ऊंचे खाले पांव पड़ जाए, किधर ले जाए, कोई ठिकाना नहीं। उस टाइम सही मार्गदर्शन नहीं मिला तो जेल भी जा सकते, धाम भी जा सकते, कुछ भी कर सकते। कबीर कहता ये चंद दिन के साथी हैं, तो धन यौवन कर गर्भन कीजे, झूठा मतलब नश्वर, झूठा पचरंग चोलरी तो हे पिया मिलेंगे। ये झूठा है, पंचभूतों से निर्मित एक खोल है, आप अलग हैं, खोली अलग होती है, तब हम करें क्या? मान लो ये झूठा ही, तब हम भगवान तक पहुंचेगा उपाय क्या? तो आगे उपाय बतलाते हैं। शून्य महल में, शून्य महल में दीप जला के, शून्य महल में दीप जला के, आसन से मत डोलरी तोहे पीव मिलेंगे। शून्य महल, भजन करते करते चित जब संकल्प विकल्प से रिक्त हो जाता है तो अंतःकरण में एकदम सन्नाटा होता है, शांति होती, इस अंतःकरण में शांति में शुभ संकल्प अभ्युदय हो ने अशुभ, उस टाइम अंतःकरण शांत प्रवाहित होता है। शून्य में जहां अंतःकरण में भले और बुरे संकल्पों की रील थमी तो दीप जला के तात भक्ति मणि उर्वस जाके, दुख लवलेसन सपने ताके, उस वक्त विभक्ति माने अलगो जी, भक्ति माने जुड़ना, भगवान से जुड़ जाता है, सूरत भक्ति रूपी मणि जागृत प्राप्त हो जाती है, भक्ति की चाल है नाम पर। तो राम नाम मणि दीप धरु चीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाह से उजियार। राम नाम एक मणि है, पहले पूर्वजों के पास दीपक मणियों के थे, मणि रख दिया प्रकाश है, ये बत्ती ठीक करो तेल भरो ये नहीं, ये तो बहुत बाद में आया, ये तो गरीबी खाता। तो राम नाम रूपी मणि रूपी दीपक को जी की देहरी के दरवाजे पर रख दो तो भीतर प्रकाश बाहर प्रकाश, माइक अंधकार वहां स्पर्श ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि मणि निरंतर प्रज्वलित है, चल रही है, नाम राम नाम में लौ लगी है, तो माया आएगी कैसे। राम नाम तो सभी जपते हैं, भगवान का नाम सब जाप करते हैं, हम भी आप भी, लेकिन मणि जी द्वारी पर टिकती नहीं। 5 मिनट राम राम, 6ठे मिनट मन हवा से बातें करने लगा, ने जाने कहां भटक गया, मन भड़बड़ाने लगता है। हम रखते हैं वो टिकती ही नहीं, कारण कि भीतर भीड़ लगी हुई है। चिंतन करते करते जो चित्त जब संकल्प विकल्प से शून्य शांत प्रवाहित हुआ, ताशन देना ये मणि स्थायित्व ले लेती है। राम नाम मणि धर जाती जी देरी पर, फिर प्रकाश अंदर बाहर सर्वत्र ईश्वरीय प्रकाश, प्रकृति का द्वंद्व नहीं पहुंच पाएगा अंधकार। तो मणि रख लेने के अर्थ ये थोड़ा ही कि हम कुछ पा गए। ठीक है, माइक अंधकार नहीं छुएगा, लेकिन उस प्रकाश के उजेले में हमको ईष्ट तक की दूरी तय करना है। उस प्रकाश में हमें वहां तक की दूरी तय करना है, भगवान तक की। इसलिए आसन से मत डोल री तो हे पीव मिलेंगे। आसन से मत डोल, आसन मारे क्या भवया, मुई न मन की आश, झूको लू के बैल को घर ही कोश 50। आसन मारने से क्या हो गया, ये पद्म आसन, ये सिद्ध आसन, आसन लगाने से क्या हो गया, ये तो हमने शरीर के आकार प्रकार के नाम दे रखे। आसन मारने से क्या हुआ, जो मन की आस नहीं मुई, कोलू का बैल बाहर झांकता भी नहीं, एक कोठे के अंदर शाम भर में 50 कोस का रन कर लेता है, थक के बैठ जाता है। तो आसन लग गया और मन की आस नहीं मुई, तो अंतःकरण तो बड़बड़ा रहा है, तरंगों का तांता लगा है, कभी कभी तो इतनी बड़बड़ाहट होती है कि आस दुख के मारे नींद हराम हो जाती है। कभी कभी परिवार का कोई सदस्य अति खिन्न होता है तो एकांत कोठे में चला जाता है, बैठ गया, आसन तो लग गया, लेकिन अंतःकरण में शोक संवेदना की लहरें उठती रहती है, एक कसक है, एक दर्द है। तो आसन लगाने से क्या हुआ, यदि मन की आस नहीं हुई। इसलिए आसन का मतलब, योग साधना में आसन का मतलब है स्थिर सुखम आसनम, स्थिर और सुख पूर्वक बैठने का नाम आसन है। वो कमरे में आड़ में सुख पूर्वक बैठा तो था, लेकिन मन में तो रुदन है। आसन मन का है, मन सब ओर से संकल्प विकल्प से रहित होकर शांत सम टिक जाए। ये आसन प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति भ्याम, जो यम और नियम में, अहिंसा सत्य अस्तेय और ब्रह्मचर्य में, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान में जो हमारा प्रयत्न चल रहा था, उसमें शिथिलता आ जाए, सहज होने लगे, प्रयत्न की शिथिलता और परमात्मा में मन लगाने से आसन सिद्ध होता है। यदि बाहर के एक शरीर के आकार प्रकार का नाम आसन है, तब परमात्मा में मन लगाने की कौन जरूरत है, कोई अभ्यास कर लो हो जाएगा। हमारे राम बाबू सेठ हैं, एक आसन से बैठते हैं तो 12 घंटे में उठते हैं, फिर आसन हिलता ही नहीं। शरीर के आकार प्रकार का नाम आसन नहीं, सृष्टि में पूर्वजों में पूर्व ऐसे महापुरुष में जो अष्टावक्र 8 अंगों के टेढ़े, महाराजा जनक के गुरु, उस युग के सर्वोपरि महापुरुष, उनका कभी आसन शरीर का लगा ही नहीं। हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज सत्संगी महाराज, एक टांग उनकी भली प्रकार टूटी हुई थी, वो पालथी लगा कभी बैठे ही नहीं, किंतु गुरु महाराज को आकाशवाणी हुई भगवान की ओर से, इस मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज हैं, वास्तव में वो महापुरुष थे। तो आसन का अर्थ होता है मन सब ओर से संकल्प विकल्प से रहित होके शांत सम टिकने लगे, ये स्थायित्व ले ले, ये अनंत प्रभु में मन लगाने से, और जो यम नियम में जो प्रयत्न चल रहा है उसमें शिथिलता आ जाने पर ही सिद्ध होता है। इसलिए आसन जहां शून्य महल भजन इतना उन्नत हुआ कि चित्त संकल्प विकसित रहित शांत प्रवाहित हो चला, तब हृदय सुना है शून्य महल, हृदय जहां शांत प्रवाहित हुई वृत्ति, तो दीप जला के राम नाम रूपी मणि दीपक प्रज्वलित हो गया, अब मणि कंठ से हटेगी ही नहीं। उस प्रकाश में जब दीप जली गया तो आसन लग गया, आसन लगना पर्याप्त नहीं, तब तक निरंतर लगे रहो डटे रहो जब तक यू प्रभु संभालने ले, तब वो लक्ष्य प्राप्त ने विदित नहीं हो जाए। तो आसन से मत डोल री तो ही पिया मिलेंगे, अवश्य परम प्रभु मिलेंगे, आसन पे लगे रहो। जोग जुगत शो आगे कहते हैं इसका सद परिणाम क्या हुआ, जोग जुगत शो रंग महल में पिया पायो अनम मोल रीतो है पिया मिलेंगे। योग एक युक्ति है, योग एक कला है, उस योग युक्ति के सहारे जोग जुगत सो रंग महल में, पहले था शून्य महल, चित्तवृत्ति जब संकल्प विकल्प से रहित शांत प्रवाहित हुई तो शून्य महल, वहां सन्नाटा भीड़ खत्म, तब तो दीप जल गया, राम नाम मणि स्थायित मणि प्रज्वलित हो गई, और जहां ईश्वरीय विभूति प्रसारित होने लगी तो रंग महल, सब रंग कच्चा सांवरिया रंग पक्का, एक रंग शुद्ध विशुद्ध रंग है जो कभी ने अपरिवर्तनशील है, तो सांवरिया रंग परम प्रभु का रंग। रंग भूमि जब सिय पगुधारी देखी रूप मोहे नर नारी, रंग भूमि जहां प्रभु की विभूतियां उतरने लगे, जहां दीप जला आसन में स्थायित्व आया तो विभूतियां अवतरित होने लगी, प्रभु का रंग वर्षने लगा, तब ये रंग में वृत्ति शांत हुई सुन और प्रभु की विभूतियां प्रसारित होने लगी तो रंग। कबीर ने इस प्रभु के स्वरूप को एक रंग की संज्ञा दी कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। परमात्मा एक लाली है, एक आभा है, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, जहां भी दृष्टि पड़ी वो लाल, ये एक चिंतन पथ की अवस्था विशेष है। उस अवस्था से कबीर गुजरा तो जित देखो तित लाल, स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना जाता देख धरे धनु बाना, ने स्वर्ग स्वर्ग के रूप में रह गया कि जिसकी हम कामना करें, ने नरक नरक के रूप में रह गया जिससे हम भयभीत हूं, ने वैकुंठ वैकुंठ के ही रूप में रह गया। जित देखो तित लाल, जहां देखा तो प्रभु की लाली ही प्रसारित दिखाई पड़ी, प्रभु का वो पक्का व शाश्वत रंग ही दिखाई पड़ा, उनकी विभूति का प्रसारण दिखाई पड़ा, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल, जहां लाली का स्पर्श हमने किया तो हम भी लाली हो गए, हम खो गए, वो प्रभु ही शेष बच रहा। जानत तुम ही हो ही जाई, उन्हें जानकर वही हो गया, देख तो मैं गया तो मैं भी हो गई लाल। तो रंग जोग जुगत सो रंग महल में जब प्रभु की विभूतियां उतरने लगी आसन के सुदृढ़ होते ही, और जहां उस मूल का स्पर्श किया तो पिया पायो अनमोल रे तो हे पीव मिलेंगे। जहां स्पर्श किया तो पिया मिल गए, पहले विभूतियां उतरती वो अवगत कराते हैं अपनी स्थिति से, और जहां स्पर्श किया तो पिया मिल गए। जिन्हें प्राप्त कर लेने के साथ ही इस जीवात्मा की सदा सदा के लिए प्यास मिट जाती है, तृप्त हो जाती, कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती, जिसका कोई मूल्य नहीं वो अनुकंपा से मिलते हैं, पिया पायो अनमोल, उसके समान कुछ है ही नहीं। भरत खिन्न थे, बाल उलझे हुए थे, शरीर कृश था, आंखों में अश्रु थे। बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृश गात, राम राम रघुपति जपत, सर्वत नयन जल जात। आंखों में आंसू, कंठ पर नाम, हृदय में राम। ये अति दुर्बल खिन्न हनुमान पहुंच गए। देखा हनुमान ने ये दशा भरत की, तो देखत हनुमान यति हर्षयं, पुलक शरीर नयन जल वर्षयं। शरीर रोमांचित हो गया, प्रेमा अश्रु छलकाए हनुमान जी के। मन महु बहुत भांति सुख मानी, बोले उं श्रवण सुधा सम बानी। बहुत प्रकार से सुख माना, अमृत के समान बोली बोले कि जासू विरह सोच दिन राती, रटे हूँ निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता। जिसके विषय में रात दिन घूलते रहते हो, गुणों की पंक्ति रटते रहते हो, वो प्रभु आगे। शत्रु को रण में जीता, सीता अनुज सहित सह कुशल प्रभु आगे। इतना सुनना था कि प्रभु आगे। सुनत वचन विसरे सब दुखा, त्रिखावंत जिमि पाय पीऊखा। इतना सुनते ही भरत का सारा दुख दूर हो गया। एक गिलास पानी का प्यासा था, अमृत पा गया। और तुरंत उछल के खड़े हो गए और बोले हनुमान, ए संदेश शरीष जग माही, खोजी रहे उन लोक तिहु नाही। नाही न तात उरिण में तो ही, अब प्रभु चरित सुनावऊं मोही। हनुमान, इस संदेश के समान कुछ है ही नहीं, मैं क्या दे के उरिण हो जाऊं। इसका कोई मूल्य ही नहीं, मूल्य चुकाऊं ऐसा सृष्टि में कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे उरिण नहीं हूं हनुमान, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। अब प्रभु का चरित्र सुनाओ। हनुमान जी ने कहा, चरित्र मत सुनो, ये जो ऊपर चिड़िया उड़ रही है यही है राम। स्वागत की व्यवस्था करो। फिर भरत कभी लौट के गुफा में नहीं गया, न राम राम जपा। अब भजन हमारे हरि करे हम पायो विश्राम। प्रभु मिल ही गए तो उनकी कीमत क्या, उसके समान सृष्टि में कुछ है ही नहीं। और पहले तो सृष्टि में कुछ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन जहां उन्हें जाना तो तब क्या हुआ, प्रकृति पुरुषोत्तम परिवर्तित हो गई। जेही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। एक सपना आया और भ्रम गया, ऐसी सृष्टि प्रकृति पुरुषोत्तम परिवर्तित हो गई। ईशा मासम उदम सरुम, अब वो भी बचा नहीं, हम क्या सौंप दें। इसलिए पिया पायो अनमोल, री तो ही पीवो मिलेंगे। जब वो प्रभु अनमोल, जिसका कुछ देखे उऋण हुआ ही नहीं जा सकता। माना कि तन मन धन हमने त्यागा और तब मिले, लेकिन त्यागा था, वस्तु कहाँ थी। वो जब मिलते हैं तो अपने अनुकंपा से, तब उसका परिणाम क्या, सद परिणाम क्या निकला। तो कहत कबीर आनंद भयो है, कबीर कहता आनंद, आनंद हो गया। राम विमुख सुख सपने उनाही, जब है ही नहीं तो पाएगा कहां। जो आनंद सिंधु सुख राशि, शीकर तेत्रे लोक सुपासी। जो आनंद के समुद्र है, सहज सुख की राशि है, जब वो अमूल्य परम प्रिया उतर ही आए, मिल गए, आनंद हुआ। अन्य सृष्टि में तो कहीं आनंद होता ही। तो कहत कबीर आनंद भयो है, अनहद बाजत ढोलरी, तो हे पिया मिलेंगे। अनहद बाजे ढोल, हद कहते हैं सीमा को, अनहद कहते हैं असीम को। उस प्रभु की जानकारी के साथ ही जग जाई हराई, जगत को खो गया, प्रकृति नश्वर, ये भी विलीन हो गई। इसकी भी एक हद है, एक सीमा है, अनहद है, असीम है, अनंत है, व्याप्त है, वो तो एक परमात्मा है। अब परमात्मा के यहां बजने लगा ढोल एलादित, खुशी ही खुशी, यहां दुख होता ही नहीं, ऐसी शांति जिसके पीछे अशांति नहीं, ऐसा सुख जिसके पीछे दुख नहीं, अनहद बाजे ढोल। अनहद माने वो परम तत्व परमात्मा, लेकिन उसकी निम्नतम सीमा जब भजन में लो लग जाए, आज आप भजन करते हो 2 घंटे, कोई कोई संत लोग 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे तक लगातार भजन में लगे रहते हैं तल्लीन होके, लेकिन एक सीमा है कि 14 घंटे, 12 घंटे, एक सीमा है, एक हद है। किंतु एक इस तरह ऐसा भी आता है, जागत में सुमिरन करे, शोवत में लो लाए, सुरत दूर लागी रहे, तार टूट ना जाए। एक अवस्था ऐसी भी आती है, जब तक जागो सुमिरन करो, सो तो लो लगा के सैन करो, जब सो के उठो तो सूरत वहीं लगी मिले, तार टूट न जाए। 8 पहर झूमत रहे, तार टूट ना जाए। पूज्य महाराज जी कहें हो, सुबह ठीक 2 बजे मेरी आंख खुल जाए, जहां आंख खुले तो भक्क देना सरुपुआ हृदय में आ जाए, और फिर ये एक ही बैठकी में सुबह 6 बज जाए। लेकिन साधक को चाहिए आंखें भली प्रकार खुली रखे, बंद कभी नहीं करे। बंद आंखों में भजन ही नहीं होता, ध्यान ही नहीं लगता, बल्कि नींद भी आती है। और इसलिए आंख खुलते यदि पहले कोई संकल्प आवे तो नाम, दृश्य आवे तो रूप, तो ये भजन की एक अवस्था विशेष है कि जागत में सुमरन, सोवत में लो, सूरत डोर लगी रहे, तार टूटना क्रम न टूटे। लेकिन ये भजन की अवस्था विशेष है, इसी क्रम में चलते चलते जहां मूल का स्पर्श किया तो प्रकृति की भी सीमाएं खत्म, भजन की भी सीमाएं खत्म। अब भजन हमार हरि करे हम पायो विश्राम, वो तो हो गए पेंशनियर, फिर भरत गुफा में कभी नहीं गए, जिसको पाना था पाई लिया, ढूंढे किसको, तो वो अनहद है, असीम है, एक पर ब्रह्म परमात्मा, वो परम धाम है। अनहद बाजे ढोल, वहाँ पर सदैव खुशियों के उमंग उठती रहती है, फिर कुछ भी पाना शेष नहीं, अवश्य प्रभु मिलेंगे। लेकिन जरा कपट की मड़िया खोल, सैया तोरे द्वारे खड़े, ये कपट क्या पर्दा खोल दो, तो घूंघट के पट खोल, री तो ही पिया मिलेंगे। घूंघट घुटे हुए घट जो इसमें पर्दे पड़े हैं, घट कहते हैं हृदय को, इसमें जो पर्दा आवरण पड़ा है, छल छदम कपट चतुराई का, माया का मलावण विक्षेप का, इस पर्दा को खोलो, निश्चल निर्लेप होके सामने जाओ, अवश्य परम प्रभु प्राप्त होंगे। उनका निवास हृदय में, घट घट रमता राम रमैया। जरा भाषा भी बदलो, कटुक वचन मत बोल, वो वचन बोलो जो ईश्वरीय माधुर्य प्रदान करे, और इस जीव को आवागमन की खानी में फेंक दे, कड़वाहट में पैदा, वो वचन बोलो। रस्ते में रुकावट है धन और यौवन, ये क्षणिक बदली के घाम की तरह आया और गया, इसके भुलावे में मत आना, छलावे में मत आना। ये पंचभूतों से निर्मित एक चोला है, एक आवरण है, आज है तो कल पुराना हो जाएगा। चित्तवृत्ति को शांत करो, हृदय में नाम राम मणि को स्थायित्व दो, जलाओ। जब मणि जली गई, नाम में लो लगी गई, तो आसन स्थिर हुआ मन का, इसे मत डोलो जब तक कि मिल नहीं जाए। योग युक्ति से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि जो योग के अंग हैं, प्रत्यंग हैं, इनकी सारी युक्ति को जा समझो, बारीक इनकी बारीकियों को देखो। योग युक्ति से जहाँ योग की योगा रूढ़ अवस्था कालम पहुंचे, तो पिया पाए अनमोल है, जिनका कोई मूल्य नहीं, जब मिलते हैं तो अनुकंपा से ही।
आनंद ही आनंद, अनहद में बाजे सदा खुशियां, संसार में सदा खुशियां कहाँ होती है। पनत पैदा हुआ, बजाओ ढोल, बैंड ले आओ, बोले कि वो बहू के तो पेट में दर्द हो गया, बोले चुप चुप हल्ला बंद करो, सदा कहाँ ढोल बजता है। लेकिन वहां फिर ऐसा आनंद जिसके पीछे दुख होता ही नहीं, ऐसी शांति जिसके पीछे अशांति नहीं, वो जीव अपने ही दृष्टा, अपने ही केवल स्वरूप, अपने स्वरूप में स्थिति प्राप्त कर लेता है। तो जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पेठ मैं भोरी बूढ़न डरी रही किनारे बैठ। भगवान से नहीं छिपाना चाहिए, जो हृदय में हो जबान पर हो, सदगुरु और भगवान के सामने जो हृदय में हो जबान पर हो, हृदय में कुछ और जबान पर कुछ और, उस साधक कभी कामयाब नहीं होता। किंतु जीव का जड़ स्वभाव है, वो कभी न कभी लपेट लगा ही लेता है अपने। धृतराष्ट्र ने सदा ही कपट किया, एक कुटिल मंत्री से मिला, उसने कहा सन्यासियों की भाषा बोलो, पांडु पुत्रों को अपने विश्वास में लाओ और खत्म कर दो। लाक्षागृह उसी दिन से धृतराष्ट्र की सूझबूझ से था, फिर वनवास में भेज दिया। अंतिम संदेशा धृतराष्ट्र ने किया सन्यासियों की भाषा बोल के, प्रिय युधिष्ठिर का संजय सिर सुमना, कहना तुम्हारे बुढ़े अंधे ताऊ को बस एक ही कष्ट है कि तुम लोग दुख में हो, लेकिन प्रिय युधिष्ठिर से कहना, मेरे प्रिय युधिष्ठिर, अनुज पुत्रों तुम जंगल ही में रहे हो, तुम्हारा ये दुर्योधन बड़ा धूर्त है, मेरा कहना नहीं मानता है, भाई भाई का झगड़ा ठीक नहीं है। तब युधिष्ठिर तो मान ही गए थे। भगवान कृष्ण बोले, राजन छात्र धर्म क्या कहता है, तुम केवल युधिष्ठिर के अनुज पुत्री नहीं हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम राजा हो, राजधर्म क्या कहता है, छात्र धर्म का पालन करो। तब बोले कि पिताजी से चरण स्पर्श करना कहना, आपके प्रति पूर्ण श्रद्धा होते भी मैं क्षत्रिय धर्म का पालन करूंगा। युद्ध हुआ, दुर्योधन की जांघें टूट गई, अब वो अंधेरा कुढ़ रहा था भीतर ही भीतर। इतने में पहुंच गए भगवान कृष्ण पांचों भाइयों को लेके। तब पूछा केशव, यहाँ कौन कौन खड़े हैं, किसकी विजय हुई। बोले राजन, आपका आशीर्वाद जिनके साथ था उनकी विजय हुई, जहाँ धर्म है वहाँ विजय होती है। राजन ये धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, मैं वासुदेव, कृष्ण आपको नमन करता हूँ। तो भीम का नाम सुनते ही वो गिरगिटान की तरह लगा कलर बदलने, ऐंठने गूंठने। बोले जरा भीम को लाओ, मैं गले मिलूंगा। भीम भोला भीम चल दिया आगे, कृष्ण ने हाथ पकड़ के खींच दिया। बोले ये जो लोहे की मूर्ति रखी है तुम्हारी, जिस पर दुर्योधन अभ्यास करता था, ये पकड़ा दे। आगे कर दिया। अंधा जन्मांत, ने कभी लोहा देखा रहा, ने कभी भीम को छुआ रहा, लिपट पड़ा, गर्दन तोड़ दिया, हाथ उखाड़ दिया, 2 किलो खून का बवन किया और मूर्छित। पांडव खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। फिर होश में आया तो सोचा बदला तो ले लिया, प्रिय दुर्योधन का बदला तो ले लिया, लेकिन फिर चिंता हो गई अपने प्राणों की। फिर वो छल छदम चलने लगा, केशव क्या हो गया, मुझ जन्मा अंध से क्या अनर्थ हो गया, मुझ मंदा मंद बुद्धि से क्या हो गया, यहाँ क्या घटना घट गई, मतलब हमें मालूम ही नहीं है, ये क्या अनर्थ हो गया, मुझ मंद बुद्धि से क्या अनर्थ हो गया। बोले नहीं राजन, आप जो कुछ करेंगे वो राजनीति का कोई पाठ होगा, आप तो कोई अनर्गल कार्य कर ही नहीं सकते, आप महान राजनीतिज्ञ हैं सम्राट। तब अंधरा घबराया, बोले कहीं भीम बच तो नहीं गया, यहाँ कौन कौन खड़े हैं। बोले भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, मैं वासुदेव, कृष्ण सब खड़े हैं। तब सोचा है, ये जितना हमने जीवन में खड़ी अंतर किया ये सब कृष्ण जानता था, मेरे अंतर के भाव को पहचान के लोहे की मूर्ति पकड़ा दिया, ये सब जानता था। तब बोला कि कृष्ण, एक भी पुत्र को जिंदा नहीं छोड़ा कि मुझे बुढ़ोती में 2 घूंट पानी तो पिला देता, इसलिए मैं विवेक खो बैठा था। भीम मुझे क्षमा कर दो, युधिष्ठिर क्षमा कर दो। तब कृष्ण बोले, राजन आपके पुत्रों की हत्या आपने स्वयं की, राज तो तुम्हारा था ही नहीं, कतई नहीं था, तुम तो एक वहां बैठे थे लेके, किंतु अपने इन पुत्र मोह में पड़ के आपने लक्षाग्रह में आप हैं, द्रौपदी चीरहरण में आप हैं, जुए में आप हैं, भीम को जहर में आप हैं, सब जगह आपका खड़ियंतर रहा, और जितना तुम आंख का अंधा है उतना हृदय का काला है, लेकिन सत्य की विजय होती है राजन, समझ गया। तो जीव का स्वभाव है छिपाना, अंत में वो अंधरा समझा कि अरे इनसे तो कुछ भी छिपा नहीं था, महान खड़ियंत्रों से भी बच गए तो इनकी वजह से, ये तो सब जानते हैं, अंतर्यामी है, किंतु ये है घूंघट। कभी कभी भगवानों से चल कर बैठते हैं, सुदामा कर बैठे, एक मुट्ठी चना चबाई तो लिया, बोले सुदामा गुरु माता ने चने दिए थे, क्या हुआ? बोले अरे कृष्ण दोनों हाथों से तो पेड़ पकड़ रखा है, कहीं गिर गए। तो बोले दांत क्या कटकटा रहे हैं? बोले अरे दुर्बल बामन हूं भैया, सीत के मारे। एक मुट्ठी चने के पीछे जन्म भर खाने बिना मर गए सुदामा, दांत हिल गए, बुढ़ोती आ गई, चश्मा का पावर बढ़ गया, तब कहीं प्रायश्चित पूरा हुआ तो सब कुछ मिला। हम सोचते हैं हम सही कर रहे हैं, लेकिन हम श्वास संकल्प बाद में करते हैं, भगवान पहले से जानते हैं, वहां कुछ हम छिपा भी तो नहीं सकते, इसलिए भगवान के सामने, सदगुरु के सामने जो हृदय में हो जबान कर, घूंघट के पट खोलिए, पर्दे को हटाओ, तो निश्चल काय वचन मन तजी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, अवश्य कृपा करेंगे, सब लोग भजन करो, ये साधना परक दृष्टिकोण यही है, सब जगह जो करते हो करो, दुत्ता दपाड़ी जो पार लगे करो, पाप करते हो तो एक फैक्ट्री और खोल लो, किंतु चिंतन पथ में जो हृदय में हो जबान पर, निश्चल निष्पर्द होके दिगंबर होके सामने आओ, दिशाएं ही अंबर हो और कोई पर्दा बीच में नहीं, क्योंकि वो लाख पर्दा करो तो पहले ही से जानते हैं, अवश्य प्रभु प्राप्त होंगे। गोपियां तलाव में अवगाहन कर रही थी कृष्ण चीर लेके कदम पर, बजाया बांसुरी तो बोले अरे कन्हैया तो यहां है, कपड़े कहां गए? कन्हैया कपड़ा दे दो। बोले आओ ले लो। बोले कैसे आवे, हम लोग तो एकदम निर्वस्त्र हैं। तो बोले गई कैसे थी? तो बोले तब यहां कोई था नहीं। बोले पागल हो गई हो, तुम्हारे हृदय में आत्मा हूं, जल में मैं वरुण हूं, आकाश में मैं हूं, पृथ्वी में मैं हूं, भला मैं कहां नहीं था, तुम्हारे अंतःकरण में मन का प्रवाह हूं, इंद्रियों में मन मैं हूं। निश्चल होके सामने आ गई, भगवान ने वस्त्र दे दिया। तो गोपिया मतलब होती गो माने इंद्रिय, इंद्रिय उदंड है, विकृत है, तो गो है, इनकी रक्षा करो, इन्हें चराओ, विवेक वैराग्य सम दम श्रद्धा समर्पण से ये संयत होती है, लेकिन और काम क्रोध राग द्वेष के द्वारा विकृत होती हैं, और जब इंद्रियां इष्ट उनकी प्रवाहित हो जाती है, त्याग रूपी तालाब में अवगाहन करने लगती है, ता वो काया ही कदम है, उसमें भगवान अवतरित हो जाते हैं, उभराते हैं और वो वस्त्र देते हैं जो दिव्य है, फिर ये जीवात्मा कभी निर्वस्त्र नहीं होगा। आज मनुष्य तन पाए तो वस्त्र पहने हो, और कल वो जोनी मिल गई बैलन वाली, तब कौन सा वस्त्र पैंट पहनोगे? फिर ये आत्मा कभी निर्वस्त्र नहीं होगी, कृष्णमय हो जाएगी, इसलिए वो वस्त्र मिल जाएगा, दिव्य वस्त्र, वस्त्र चित ही चीर है, चित में वो आभा उभर आएगी जो सीधा भगवान का ही एक आभा रहेगी, उसमें दूसरा कुछ नहीं। तो ये इंद्रियां गोपियां होती, जब स्टोन मुख प्रवाहित हो जाती तो भगवान काया से जागृत होके अपने वस्त्र अपनी चित में अपना प्रसारण प्रदान कर देते हैं, फिर ये जीव कभी निर्वस्त्र नहीं होता, कभी ये मर्यादा से नीचे नहीं उतरता, लक्ष्य में ही समाहित होके रहता है, इसलिए निश्चल होके चिंतन करो,
बाहर जो पाप की फैक्ट्री खोलोगे, प्रभु हृदय से भजन जब जागृत होगा तो पुराना पाप भी जल जाएगा और नई फैक्ट्री भी स्वाहा। और आज हम ई मत करी, पाप मत करी, पुण्य मत कर, और भजन है ही नहीं जागृत, तो क्या होगा? ये लोग की अटल लाइन पकड़ो, जो जो स्तर उठेगा, पौधा से पेड़ होगा, पेड़ से फूल होंगे, फूल से फल आएगा, जहाँ टेस्ट मिला तो खुद ही छोड़ दोगे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय राम,
ओम जय सिया राम जय जय सिया राम,
सिया राम जय जय सिया राम।
बोलो श्री गुरुदेव भगवान की।